एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार।
नमस्कार। और ज्ञान गोष्ठी में आपका फिर से स्वागत है।
नमस्कार।
आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं दिमाग घुमा देने वाले विषय पर बात करने वाले हैं, केओस।
हाँ, केओस। लेकिन घबराइए नहीं, ये वो लड़ाई झगड़े वाला केओस नहीं है।
बिल्कुल नहीं, हम बात कर रहे हैं एक वैज्ञानिक सिद्धांत की। लियोनार्ड स्मिथ की एक किताब है केओस, अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन, उसी के बारे में।
सही कहा। और ये आजकल बहुत जरूरी विषय है ना, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि चीजें हमारे कंट्रोल में रहें, हम भविष्य जान पाएं।
हाँ, जैसे मौसम कैसा होगा, बाजार ऊपर जाएगा या नीचे,
या हमारी अपनी जिंदगी का क्या होगा।
पर ये किताब हमें कुछ और ही बताती है।
यही के कुछ चीजें जिनके नियम हमें पता भी हों, वो भी अप्रत्याशित हो सकती हैं स्वभाव से ही।
और इसी केओस सिद्धांत को समझना इतना जरूरी हो जाता है, सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए नहीं, हम सबके लिए।
बिल्कुल। यह हमें सिखाता है कि अनिश्चितता, मतलब अनसर्टेनिटी, उसे कैसे समझें, उसके साथ कैसे रहें। तो आज हम इसी केओस की दुनिया में थोड़ा गहरे उतरेंगे।
हाँ, और कोशिश करेंगे कि इसे आसान भाषा में समझाएं,
दिलचस्प तरीके से।
तो पहले लेखक के बारे में थोड़ी बात कर ले, लियोनार्ड स्मिथ।
हाँ बताइए।
वो सिर्फ किताबी गणितज्ञ तो नहीं है जैसा आपने बताया?
नहीं, बिल्कुल नहीं। वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे बड़े नामों से जुड़े तो हैं, पर उनकी असली बात वो नहीं है।
तो क्या है?
असली बात यह है कि वो सिद्धांत और असल दुनिया दोनों को बखूबी समझते हैं। उन्होंने दशकों तक मौसम और जलवायु परिवर्तन जैसे, आप कह सकते हैं, जमीनी मुद्दों पर काम किया है।
अच्छा, मतलब वो सिर्फ थ्योरी नहीं बनाते बल्कि देखते हैं कि असलियत में क्या होता है।
एग्जैक्टली। वो जानते हैं कि कंप्यूटर मॉडल और असल दुनिया की जो उठापटक है उसमें क्या फर्क है।
और यही चीज उनकी किताब में दिखती भी होगी फिर?
हाँ, दिखती है। वो केओस को सिर्फ एक गणित की पहेली की तरह नहीं देखते, वो इसे एक फ्रेमवर्क की तरह देखते हैं कि अनिश्चित दुनिया में कैसे सोचा जाए, कैसे फैसले लिए जाएं।
और वो ये भी साफ करते हैं कि विज्ञान सब कुछ नहीं बता सकता, खासकर भविष्यवाणी के मामले में, उसकी अपनी सीमाएं हैं।
तो अब आते हैं किताब के मूल विचार पर, एकदम आसान शब्दों में कहें तो।
हाँ, बिल्कुल आसान भाषा में
किताब ये बताती है कि कैसे बिल्कुल सीधे साधे तय नियमों वाले सिस्टम भी,
तय नियम वाले मतलब जिनके रूल्स हमें पता हैं,
हाँ, जिन्हें वैज्ञानिक डिटर्मिनिस्टिक कहते हैं, वो भी ऐसा बर्ताव दिखा सकते हैं जो पूरी तरह से अप्रत्याशित हो, अनप्रेडिक्टेबल।
अरे वाह, ये तो बड़ी अजीब बात है, नियम पता है फिर भी नतीजा नहीं पता।
हाँ, है ना, कमाल की बात। और इसीलिए केओस सिर्फ गड़बड़ी या मैस नहीं है, ये एक अलग ही तरह का ऑर्डर है, बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म का।
तो किताब इसी पहेली को सुलझाती है कि उस दुनिया को कैसे समझें जहां एक जरा सी चीज बहुत बड़ा फर्क ला सकती है।
बिल्कुल। आपने वो बटरफ्लाई इफेक्ट सुना है कि कहीं एक तितली पंख फड़फड़ाए तो दूसरी जगह तूफान आ सकता है?
हाँ, सुना तो है।
मजाक जैसा लगता है थोड़ा।
लगता है, पर ये किताब इसी तरह के आइडियाज को समझाती है। और अच्छी बात यह है कि बिना मुश्किल गणित के। स्मिथ रोजमर्रा के उदाहरण लेते हैं, जैसे टपकता हुआ नल।
टपकता हुआ नल, उससे केओस कैसे?
हाँ, या पेंडुलम। इन आसान चीजों से वो केओस के सिद्धांत समझाते हैं।
चलिए थोड़ा और समझते हैं इसे। सबसे पहला आइडिया जो मुझे बहुत चौंकाने वाला लगा वो है निश्चितता बिना भविष्यवाणी के, डिटर्मिनिज्म विदाउट प्रेडिक्टेबिलिटी।
हाँ, ये सुनने में ही विरोधाभासी लगता है ना?
बिल्कुल, कि नियम तो पक्के हैं पर आगे क्या होगा पता नहीं, ये कैसे मुमकिन है। अब आपने नल थोड़ा और खोला, हो सकता है अब वो टिप 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 ऐसे करने लगे, पैटर्न बदल गया। थोड़ा और खोला तो शायद पैटर्न और भी अजीब हो जाए। और फिर एक पॉइंट ऐसा आता है जब आप बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा सकते कि अगली बूंद ठीक कब गिरेगी।
अच्छा, मतलब वो रैंडम सा हो जाता है।
हाँ, व्यवहार अप्रत्याशित हो गया।
जबकि नल का मैकेनिज्म, पानी का दबाव, गुरुत्वाकर्षण, वो नियम तो वही है।
कमाल है, नियम नहीं बदले पर व्यवहार बदल गया।
यही है केओस।
हाँ, यही है। और मौसम का पूर्वानुमान इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है।
वैज्ञानिक नियम जानते हैं, बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर है उनके पास,
फिर भी
4-5 दिन से आगे का ठीक ठीक बताना मुश्किल क्यों हो जाता है?
क्योंकि मौसम भी एक केओटिक सिस्टम है। यहीं पर दूसरा बड़ा आइडिया आता है, शुरुआती स्थितियों पर संवेदनशील निर्भरता, सेंसिटिव डिपेंडेंस ऑन इनिशियल कंडीशंस।
यानी वो बटरफ्लाई इफेक्ट वाली बात।
बिल्कुल। एडवर्ड लॉरेंस एक मौसम विज्ञानी थे, उन्होंने 1960s में इसे नोटिस किया। अपने कंप्यूटर मॉडल में उन्होंने शुरुआत का तापमान या हवा का दबाव बस जरा सा बदला, डेसिमल के कुछ पॉइंट तक।
हाँ, तो क्या हुआ?
और पाया कि कुछ ही मॉडल टाइम में जो फोकस था वो बिल्कुल ही अलग हो गया, पूरी तरह डिफरेंट।
बापरे, मतलब शुरुआत की जानकारी में इतना छोटा सा अंतर जिसे शायद हम ठीक से नाप भी ना पाए।
हाँ, वो समय के साथ बढ़ता जाता है, एम्पलीफाई होता है और नतीजों में जमीन आसमान का फर्क ला देता है।
ये तो थोड़ा डरावना भी है कि जरा सी गलती से सब गुड़ गोबर।
हाँ, कह सकते हैं, लेकिन ये नॉन लीनियर सिस्टम की सच्चाई है। दुनिया एक सीधी लाइन में नहीं चलती कि छोटा कारण तो छोटा ही असर होगा।
जैसे हमारे यहाँ भी होता है, सोशल मीडिया पर कोई छोटी सी अफवाह फैली
और देखते देखते बड़ा बवाल खड़ा हो गया, या शेयर बाजार में कोई एक खबर आई और पूरा मार्केट हिल गया। ये सब इसी सेंसिटिव डिपेंडेंस के उदाहरण है।
लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि सब कुछ बस गड़बड़ी है, कुछ समझ ही नहीं सकते, किताब कुछ और कहती है ना?
हाँ बिल्कुल। तीसरा महत्वपूर्ण आइडिया यही है कि ऑस में छुपा हुआ क्रम, ऑर्डर विद इन अपेरेंट रैंडमनेस।
ये कैसे, गड़बड़ी में क्रम?
हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प है। स्मिथ हमें फ्रैक्टल्स और स्ट्रेंज अट्रैक्टर्स के बारे में बताते हैं। फ्रैक्टल्स तो शायद लोगों ने सुने हों।
हाँ, वो पैटर्न जो खुद को दोहराते हैं अलग अलग स्केल पर।
बिल्कुल, जैसे पत्ता गोभी या फूल गोभी देखो, उसका छोटा सा हिस्सा भी पूरी गोभी जैसा ही दिखता है, या पेड़ की टहनियां, पहाड़ों के किनारे, एक तरह का सेल्फ सिमिलर पैटर्न होता है।
अच्छा, और ये स्ट्रेंज अट्रैक्टर्स, ये क्या चीज है?
इसे ऐसे सोचिए जैसे कोई नदी बह रही है।
ठीक है,
नदी में पानी का बहाव हर पल बदल रहा है, भंवर हैं, लहरें हैं, सब अप्रत्याशित हैं, क्योटिक, पर पानी रहता तो नदी के किनारों के बीच ही है ना?
हाँ, वो तो है।
स्ट्रेंज अट्रैक्टर गणित की दुनिया में कुछ ऐसे ही किनारे या बाउंड्री जैसे हैं। ये वो अनदेखे ज्यामितीय आकार हैं जिनके अंदर अंदर ही क्योटिक सिस्टम का व्यवहार घूमता रहता है, चाहे वो कितना भी अनियमित लगे।
अच्छा, मतलब भले ही सिस्टम का अगला कदम क्या होगा ये ना पता हो, पर लंबे समय में वो एक खास दायरे में ही रहेगा।
हाँ, एक खास पैटर्न फॉलो करेगा, जैसे लोरेंस का वो फेमस तितली के आकार वाला अट्रैक्टर। तो जो चीज ऊपर से एकदम रैंडम या बिखरी हुई दिखती है, उसके अंदर भी एक छुपी हुई गहरी संरचना हो सकती है।
ये तो वाकई कमाल है, जैसे शहर का ट्रैफिक जैम लगता है बिल्कुल क्योटिक है, कब लगेगा कब खुलेगा पता नहीं, पर फिर भी उसके बनने और खुलने के कुछ मोटे मोटे पैटर्न्स तो होते ही हैं।
बिल्कुल सही पकड़ा।
और ये कियोस सिर्फ फिजिक्स या मैथ्स तक ही सीमित नहीं है?
नहीं, बिल्कुल नहीं। चौथा पॉइंट यही है कि कियोस प्रकृति और जीव विज्ञान में भी हर जगह है, जैसे शिकारी और शिकार की आबादी का घटना बढ़ना।
हाँ, वो ऊपर नीचे होता रहता है।
या कोई बीमारी कैसे फैलती है, यहाँ तक कि हमारे अपने शरीर में दिल की धड़कन या दिमाग की तरंगों में भी कियोटिक पैटर्न मिलते हैं।
दिल की धड़कन में कियोस? ये तो अजीब है, हम तो सोचते हैं एकदम रेगुलर होनी चाहिए।
थोड़ी सी अनियमितता, जिसे हेल्दी कियोस कहते हैं, वो असल में शरीर के लचीलेपन का संकेत हो सकती है। मतलब शरीर बदलती परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढाल पा रहा है।
अच्छा, बिल्कुल मशीन की तरह एक ही रिदम में चलना शायद ठीक नहीं।
शायद नहीं, ये दिखाता है कि कैसे सिस्टम धीरे धीरे व्यवस्थित से कियोटिक बन सकते हैं। जैसे वो नल वाला उदाहरण था, पहले रेगुलर टिप टिप, फिर पैटर्न डबल हुआ, इसे पीरियड डबलिंग कहते हैं, और फिर पूरी तरह कियोटिक।
तो हमने देखा कि कियोस नियमों से बंधा है पर अप्रत्याशित है, छोटी शुरुआत का बड़ा असर, इसमें छिपा हुआ क्रम भी है और ये हर जगह है। अब सवाल ये कि अगर हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते तो इस ज्ञान का फायदा क्या?
हाँ, ये अहम सवाल है और यही पांचवा विचार आता है, पूर्वानुमान की सीमाएं और कियोस को समझना, लिमिट्स ऑफ प्रिडिक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग कियोस।
तो क्या समझना है इसमें?
स्मिथ कहते हैं कि कियोस को समझना हमें भविष्यवाणी का जो एक झूठा घमंड होता है उसे छोड़ने में मदद करता है। परफेक्ट भविष्यवाणी, खासकर लंबे समय के लिए, शायद कभी संभव ही ना हो।
लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें?
नहीं, बिल्कुल नहीं। हम सटीक नतीजे के बजाय संभावनाओं की रेंज को समझ सकते हैं। जैसे मौसम विभाग अब सिर्फ ये नहीं कहता कि कल बारिश होगी।
हाँ, वो कहते हैं बारिश की 60% संभावना है।
बिल्कुल, ये ज्यादा ईमानदार और ज्यादा उपयोगी तरीका है। इसे एंसेम्बल फोरकास्टिंग कहते हैं। कई सारे मॉडल थोड़े अलग अलग शुरुआती अनुमानों से चलाकर देखना कि क्या क्या हो सकता है।
और क्या हम कियोस को किसी तरह काबू में कर सकते हैं, टेम कर सकते हैं?
कुछ हद तक। कियोस कंट्रोल जैसी तकनीकें हैं जहां सिस्टम में सही टाइम पर छोटे छोटे दखल देकर उसे थोड़ा स्थिर या मनचाही दिशा में ले जाया जा सकता है। पर उससे भी ज्यादा जरूरी है अनिश्चितता को स्वीकार करना,
उसे एक्सेप्ट करना,
हाँ, और उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग करना, रिस्क को मैनेज करना।
इस किताब में कुछ बातें सच में सोचने पर मजबूर करती हैं, जैसे वो लाइन कि केओस केवल अव्यवस्था नहीं है, यह व्यवस्था के भीतर अव्यवस्था है, ये अव्यवस्था के भीतर व्यवस्था है।
हाँ, ये केओस के दोहरेपन को बहुत अच्छे से पकड़ती है, ऊपर से गड़बड़ पर अंदर एक ढांचा।
और एक और विचार था, केओटिक सिस्टम में पूरा उसके हिस्सों के योग से अधिक होता है और भविष्य अतीत के विस्तार से अधिक होता है।
गहरा है ये, मतलब आप सिस्टम को सिर्फ उसके पुर्जे जोड़कर नहीं समझ सकते, और ना ही आप बस अतीत के ट्रेंड को आगे खींचकर भविष्य जान सकते हैं। दुनिया इससे कहीं ज्यादा जटिल और इंटरकनेक्टेड है।
और मेरा पसंदीदा तो ये है, केओस हमें सिखाता है कि अनिश्चितता ज्ञान की दुश्मन नहीं है, ये बुद्धिमता का एक अनिवार्य घटक है।
वाह, क्या बात कही है,
है ना? अनसर्टेनिटी से डरने या उसे इग्नोर करने के बजाय उसे स्वीकार करना और उसकी सीमाओं के साथ जीना सीखना, यही असली समझदारी है।
ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर अब सवाल ये है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या करें इन आइडियाज का।
हाँ, ये जरूरी सवाल है। देखिए, कई तरीके हैं। सबसे पहले तो पर्सनल प्लानिंग में हमें ये मानना होगा कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है।
बिल्कुल,
बटरफ्लाई इफेक्ट की तरह छोटी आदतें या छोटे फैसले भी बड़ा असर डाल सकते हैं, तो उन पर ध्यान देना अच्छा है। लेकिन साथ ही एकदम पत्थर की लकीर वाली योजनाएं बनाने से बेहतर है कि हम फ्लेक्सिबल रहें,
अडैप्टेबल, मतलब जरूरत पड़ने पर रास्ता बदलने को तैयार।
हाँ, जैसे करियर बदलना हो या कोई नई स्किल सीखनी हो, एकदम रिजिड प्लान शायद काम ना करे।
सही बात है। और मौसम का पूर्वानुमान, अब हम उसे बेहतर समझ सकते हैं, क्यों एक हफ्ते बाद का फोकास्ट भरोसेमंद नहीं होता और वो संभावना का क्या मतलब है।
हाँ, तो हम अपनी तैयारी उसी हिसाब से कर सकते हैं, छाता लेना है या नहीं।
और स्वास्थ्य की बात भी की थी हमने, शरीर की लय में थोड़ी नेचुरल अनियमितता ठीक हो सकती है।
और निवेश, शेयर मार्केट तो केओटिक होता ही है, कोई गारंटी से नहीं कह सकता कल क्या होगा।
तो भविष्यवाणी पर दांव लगाने से अच्छा है कि रिस्क को समझें, उसे मैनेज करें
और अपने निवेश को फैला कर रखें, डाइवर्सिफाई करें।
बिल्कुल, मतलब प्रिडिक्शन की कोशिश छोड़ो, पॉसिबिलिटीज को समझो और रिस्क को संभालो, ये ज्यादा प्रैक्टिकल लगता है।
तो इस पूरी चर्चा से आपके लिए सबसे अहम सीख क्या रही? मेरे लिए तो शायद यही कि अनिश्चितता से डरने की जरूरत नहीं है, ये हमें विनम्र बनाती है।
विनम्रता, ये बात सही है।
हमें याद दिलाती है कि दुनिया हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा पेचीदा और दिलचस्प है, और हम सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, और इस एहसास में एक तरह की शांति भी है, पता है?
हाँ, ये बात तो है। और मुझे सबसे ज्यादा हैरान इस बात ने किया कि कैसे एकदम तयशुदा मैथमेटिकल नियमों वाले सिस्टम भी इतने अनप्रिडिक्टेबल हो सकते हैं। ये पूरी न्यूटन वाली सोच को हिला देता है कि दुनिया एक घड़ी की तरह चलती है।
सही कहा, ये दिखाता है कि ऑर्डर और डिसऑर्डर के बीच की लाइन कितनी पतली है, कितनी धुंधली।
बिल्कुल।
तो चलिए, अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगली बार जब आपके आसपास कुछ अप्रत्याशित हो, चाहे वो सड़क पर अचानक लगा जाम हो, मौसम का बदलता मिजाज हो, या जिंदगी में आया कोई अनचाहा मोड़, जरा सोचिएगा, क्या उसमें कियोस की कोई झलक है?
क्या उस ऊपरी गड़बड़ी में कोई छिपा हुआ पैटर्न या कोई व्यवस्था दिखती है, या किसी बहुत व्यवस्थित चीज में अचानक कुछ अप्रत्याशित होने की संभावना? इस पर सोचिएगा जरूर।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।